मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं फिलहाल प्री एग्जामिनेशन के बारे में ही आपसे कुछ बातें करूंगा और खासकर मैं आज इस विषय पर बात करूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होंगे और जब बैठ गए होंगे तब आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक चलते चलते बस यूं ही एक निर्देश के तौर पर, एक सलाह के तौर पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि इस बीच में सिविल सर्विस के फाइनल रिजल्ट आ गए हैं, ढेर सारी बातें अखबारों में छप रही हैं, ढेर सारी यूट्यूब चैनल्स पर भी आपको उनके बारे में, इंटरव्यूज के बारे में पढ़ने को, सुनने को, जानने को मिलेंगे। चूंकि अभी आप प्री एग्जामिनेशन देने वाले हैं और कुछ ही दिनों के बाद तो देने वाले हैं, वो बिल्कुल सिर पर आ ही गया है, तो अभी उन पर ज्यादा तवज्जो न दें। उन पर यानी कि जो यूट्यूबर इन सब पर आ रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो न दें। हाँ, अगर आपको कहीं कुछ अच्छा देखने को सुनने को मिल जाता है तो अच्छा होगा कि आप उसे एक जगह नोट कर लें ताकि परीक्षा देने के बाद इत्मीनान से आप उन्हें सुन सकें और उनका समुचित उपयोग भी कर सकें। तो मैं उन्हें रिजेक्ट करने की बात नहीं कह रहा हूं, अस्वीकार करने की बात नहीं कह रहा हूं, बस फिलहाल थोड़ा सा पोस्टपोन करने की बात कह रहा हूं। क्योंकि होता यह है कि जब हम इस तरह की चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं कि हम मोटिवेट भी हो सकते हैं और हम डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कल मैंने ऐसा, मैं देख रहा था इसको, तो उसमें मुझे एक लड़की जो अभी आईएएस में आई है उनका एक वक्तव्य जानने को मिला। वो रील के तहत, वो छोटा सा ही वक्तव्य था, वो पांचवें अटेम्प्ट में वो सफल हुई हैं। थोड़ा सा चूंकि निकल चुका था तो मैं नाम नहीं पकड़ पाया और न ये समझ पाया कि उनकी रैंकिंग क्या है। फिफ्थ अटेम्प्ट में वो आईएएस में आई है और उन्होंने बताया कि शुरू के चार अटेम्प्ट में वो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो अब ये दोनों तरफ से है। पहली बात कि आपको लगे कि बाप रे, मतलब चार बार दिया और प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं तो पहली बार ही दे रहा हूं, दूसरी बार ही दे रही हूं, तो मेरा क्या होगा, इस तरह की बात भी आ सकती है। और दूसरी बात ये भी आ सकती है कि कोई बात नहीं, हम बड़े बड़े लोग नहीं हो पा रहे, अगर हमारा भी नहीं होगा तो देखा जाएगा, आगे तो और अटेम्प्ट है ना, वो पांच बार में क्वालिफाई की है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ देंगे, लापरवाही के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ देंगे। तो जब अंदर से भय खत्म हो जाता है तो याद रखिए कि हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं, बशर्ते कि हम उसे पॉजिटिव तरीके से लें, अदरवाइज नकारात्मकता भी हमारे अंदर आ सकती है। तो मुझे यह लगता है कि जब भी आपको इस तरह की बातें सुनने, पढ़ने, देखने को मिल रही होंगी तो आप प्लीज उन्हें बहुत ही सकारात्मक तरीके से लें। दोस्तों, ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है अनसर्टेन तो है, यानी कि सफलता की गारंटी तो नहीं दी जा सकती। यहां तक कि जो हर साल टॉप करते हैं, अगर उन्हें नेक्स्ट ईयर फिर से बैठने का मौका दे दिया जाए तो पता नहीं उनकी ही स्थिति क्या होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हमें तो करना पड़ेगा। और हम एक ही काम कर सकते हैं कि अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करें, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि नो स्टोन टर्न अनलेफ्ट, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि कोई भी पत्थर छूटना नहीं चाहिए हिलाए जाने से, हर पत्थर को आप हिलाइए, मतलब सारी कोशिशें करके आप को देख लेनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। शुरुआत में अपने थोड़े से छोटे से अनुभव से करना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरा अपना यह अनुभव आपको ढेर सारी बातें कह जाए। दोस्तों, पहली बार जब मैं सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठ रहा था प्री में, तो मैं तो कहां छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के गांव का लड़का, रहने वाला लड़का, और फिर मैंने जो सेंटर भरा था वो दिल्ली भरा था। दिल्ली इसलिए भरा था कि दिल्ली में हमारे रिलेटिव्स रहते थे, तो ये था कि वे वहां जाकर के ठहर जाएंगे, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, खर्चा नहीं लगेगा और एग्जाम दे देंगे। तो पहले दिन तो मैं सेंटर देख करके अपना आ गया कि मेरा सेंटर कहां है। जहां मैं ठहरा था वहां से हालांकि 25 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर था, लेकिन ठीक है, बसें थी, देख करके मैं आ गया। और दूसरे दिन मैं काफी पहले अपने सेंटर पर पहुंच गया, लगभग लगभग पौन घंटे, एक घंटे पहले पहुंच गया। डर रहता है बस में जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, और ऐसा किया भी जाना चाहिए, पहले पहुंचना बेहतर है, क्योंकि अदरवाइज आप तनाव में रहेंगे लगातार, और वैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके तनाव झेलना है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि वहां बिल्कुल सुन्न सपाटा पड़ा हुआ है, मुझे तो डाउट होने लगा कि मैं सही जगह पर पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा हूं। तो मैंने कंफर्म किया कि भैया यही एग्जाम होना है, मैंने अपना उन्हें आई कार्ड दिखाया, मैंने उन्हें बकायदे अपना प्रवेश पत्र दिखाया, बोले कि नहीं नहीं एग्जाम यही है, आप सही जगह पर आए हैं। मुश्किल से 15 मिनट अब एग्जाम के बच गए होंगे, तब लोगों का रेला आना शुरू हुआ, भीड़ आनी शुरू हुई, उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गए थे, लेकिन भीड़ बढ़नी शुरू हो गई जब 15 मिनट बचे हुए थे। तो अब ये जो 15 मिनट बचे हुए थे, मैं तो किनारे खड़े होकर के देख रहा था कि अब गाड़ियां आनी शुरू हुई, साए साए गाड़ियां आ रही हैं और वो पोर्च पे रुक रही हैं, और उसमें से स्टूडेंट उतर रहे हैं जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और बिल्कुल बाकायदे वो पीछे सीट पर बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रही हैं, फिर कोई उतर करके उनका गेट खोल रहा है, और फिर पढ़ते पढ़ते वो बाहर उतर रहे हैं, बाहर उतर रही हैं। मैंने इन सबको देखा, और इनको देखने के बाद मैं एकदम से डिमोरलाइज हो गया। क्यों? मैंने कहा कि मैं तो 1 घंटे पहले से यहां आया हुआ हूं, अपने स्थान से पता नहीं कितने दिन पहले से चला हुआ हूं, और ये सब इतने पढ़ाकू लोग हैं, इतने पढ़ाकू लोगों के सामने मेरी क्या विसात होगी। दोस्तों, इनफैक्ट सच बात यह है कि मैं डिमोरलाइज हो गया। एग्जाम हुआ, दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैंने इतनी बेवकूफी वाली गलतियां की कि आज भी मैं जब उसके बारे में सोचता हूं तो हंसी आती है। अपने ऊपर गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है। ये पहली बात। आपको किसी भी हालत में अंतिम क्षण तक अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, अपने को डिमोरलाइज मत होने दीजिएगा किसी भी स्थिति में। और सच पूछे तो डिमोरलाइज होने का कोई कारण नहीं है। जो भी हमें बाहर दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो अंदर का भी सच हो। अगर कोई बहुत स्मार्ट लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं पटर पटर, या किसी विषय पर बात कर रहे हैं और आप वैसा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है, वही सेलेक्ट होंगे और आप नहीं होंगे। प्लीज इस सच को आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर डिमोरलाइज हो गए आप तो मान करके चलिए कि बिना खेले ही आप मैच हार चुके हैं। दोस्तों, अब मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात, आप बकायदे अपनी जो जरूरतें हैं उनके साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। जरूरतें हैं कहने से मेरा मतलब क्या है, आपको अपना प्रवेश पत्र रखना होगा, आपको बकायदे पेंसिल रखनी होगी, ये सारी चीजें आप अपने पास रख करके चलें। साथ ही साथ आप उन चीजों को भी याद करें जो आपके साथ हो सकता है कि घटित हो और आपको जरूरत पड़ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे सिर में कभी भी दर्द हो जाता था, और अगर सिर में दर्द हो रहा है, आपको एग्जाम देना है, तो आप क्या परफॉर्म करेंगे? तो मैं अपने साथ हमेशा सिर दर्द की गोली रखता था, और मैं वेट नहीं करता था, जैसे ही सिर दर्द के लक्षण मुझे दिखाई पड़ते थे, महसूस होते थे, वैसे ही मैं वो गोली खा लेता था ताकि दर्द बढ़ने ना पाए। तो आप देखें कि क्या इस तरह के किसी मेडिसिन की आपको जरूरत होती है, और अगर होती है तो आप बकायदे उसे याद करके रख लें। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं जाते समय हम उसे रख लेंगे, बेहतर होगा कि आप अपनी एक दराज बना लें, आप अपनी थैली या जो कुछ भी है कभी से तैयार कर लें, और उसमें ये सारी चीजें डालते चले जाएं ताकि अचानक उस समय याद करने की जरूरत ना पड़े और कोई चीज छूट भी ना जाए। दोस्तों, एक सलाह मैं और देना चाहूंगा कि बेहतर होगा कि आप अपने साथ चॉकलेट रख लें या कोई भी मीठी चीज रख लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन के दौरान जब अगर आपको घबराहट होने लगती है कि नहीं पेपर नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चंस खराब हो रहे हैं, पता नहीं मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, या आपके हाथ पैर कांपने लगे, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं, और न भी आए तो हमें तैयार रहना चाहिए। मैं चॉकलेट ही तो रखने के लिए कह रहा हूं, आप अपने साथ चॉकलेट रख लें। जैसे ही आपको थोड़ी सी भी घबराहट महसूस हो तो प्लीज आप चॉकलेट खा लें। इससे क्या हो जाएगा? इससे होगा ये कि चॉकलेट में जो मीठापन है वो आपके शरीर में जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसे थोड़ा सा बढ़ा देगा, और शरीर में जब ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, और घबराहट में थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। मिल क्या सकती है? आपको मिलेगी ही। तो आपको ये भी करना चाहिए कि अपने साथ आप इस तरह की कोई चीज जरूर रख लें। दोस्तों, एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखना यह होगा कि आप 2 घंटे लगातार बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इससे पहले कि आप अपना सीट ग्रहण करें बेहतर होगा कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, ताकि 2 घंटे बीच में जरूरत पड़े ही नहीं कि आप उठें। लेकिन अगर बाई दिवे उठने की जरूरत महसूस हो रही है तो प्लीज आप उठ जाएं। यह मत सोचे कि 5 मिनट खराब हो जाएंगे, 2 मिनट खराब हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि अगर आप उठेंगे नहीं तो बार बार आपका दिमाग उधर जाएगा और आपका कंसंट्रेशन भंग होने लगेगा। इसीलिए आप देखें कि आपकी हैबिट क्या है, यह आपकी अपनी हैबिट पर डिपेंड करता है। एग्जामिनेशन हॉल में आप कोशिश कीजिए कि अगर प्यास भी आपको लग रही है तो बस 2-1 घूंट पानी पी लीजिए ताकि गला थोड़ा सा तर हो जाए, दैट्स ऑल। क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वहां 1-1 मिनट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो पानी बहुत थोड़ा सा लें, उससे भी आपको मदद मिलेगी। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हों तो इधर उधर ज्यादा मत देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कितने तेजी के साथ कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या मेरी तरह वो भी इधर उधर ताक रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदतें होती हैं, इस तरह की आदतें। आपको इससे अपने आप को बिल्कुल बचाना है। पहले मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि आपको आशा की जो डोर है किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है, चाहे पेपर कितना भी खराब क्यों न हो रहा हो। क्योंकि मान लीजिए कि सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो अंततः आपको मार्कशीट तो मिलेगी ना, और अगर आप बैठ ही रहे हैं एग्जामिनेशन में भले ही सिलेक्शन न हो, तो इसे आप अनुभव का अटेम्प्ट तो बना ही सकते हैं। तो अनुभव का अटेम्प्ट बनेगा कैसे, क्योंकि जब आप सब कुछ करेंगे अपने ढंग से जो जो आप कर सकते हैं तभी तो आप उसका पूरी तरह से लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज आप लाभ नहीं उठा पाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप मान करके चले भले ही कि मैं हारने के लिए ही खेल रहा हूं, लेकिन मैं खेलूंगा अच्छे तरीके से, और इसलिए अच्छे तरीके से खेलूंगा ताकि अगला जो मैच होगा, जो मेरा अगला खेल होगा, वो बेहतर हो सके। आपने इशिता का इंटरव्यू अगर सुना होगा, दूरदर्शन पर भी उसने यही बात कही थी कि मैं जो अपनी गलतियां थी लगातार उन गलतियों को ठीक करती चली गई। ये उन्होंने अपनी सफलता का राज बताया इशिता कुमार ने, और ये तो जीवन के किसी भी क्षेत्र की सफलता का सबसे बड़ा राज है। तो दोस्तों अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। कल इस विषय पर मैं अंतिम रूप से आप लोगों से बातें करूंगा, इसलिए अगर कुछ और प्रश्न आप लोगों के मन में हो तो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न मैंने पहले से नोट किए हुए हैं, और फिर इतवार को तो आप एग्जाम देकर आएंगे ही। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, लिमांशी कोटा राजस्थान से, नीरज वर्मा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और अल्पना पावापुरी बिहार से। आप तीनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।